कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
अपना बहाया हम सबों के अंदर विवेक पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह विवेक क्या है? किसी ने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है, विवेक हमारी आत्मा में परमेश्वर की एक आवाज़ है, यानी यह हमारे अंदर परमेश्वर की आवाज़ को पहुंचाता है और इसीलिए यह मनुष्य के अंदर डाला गया है। यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। ये हमारे अंदर परमेश्वर की आवाज़ को उत्पन्न करने का कार्य करता है, यानी यह हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है जो हमें यह बतलाने का कार्य करता है कि हमने सही कार्य किया अथवा गलत, और ये हमें सही कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तब ये हमें दोषी ठहराता है तथा बतलाता है कि हमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तो प्रिय श्रोता, जब हमारा विवेक ही हमें दोषी ठहराने लगे तो हम क्या करेंगे? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का एक विशेष हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया इन वचनों पर गौर करें। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा गया है, अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ से यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उत्पत्ति 50 अध्याय 14 से लेकर 17 पदों तक। प्रिय श्रोता, जब आपका विवेक ही आपको दोषी ठहराने लगे तो आप क्या करेंगे? कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे? यूसुफ के भाइयों के अंदर से भय कैसे निकल सकता था और उन्हें शांति कैसे मिल सकती थी? इसके लिए सबसे जरूरी ये था कि उनके आरोपों पर ध्यान दिया जाए। इसराइल की मृत्यु के बाद ये सभी भाई डरे व सहमे हुए थे। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं यूसुफ उनसे पलटा न लेने लगे, क्योंकि उनका पिता उनके लिए ढाल की नाई था जो इसकी शरण में रहने वाले व्यक्ति की रक्षा कर सकता था, पर अब वह रक्षक नहीं रहा। इसलिए वे बड़े आतंकित होने लगे और कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। उनकी इस परिस्थिति पर हम जरा गौर करें। सालों साल वे इस भय में जीवन बिताते रहे। 30 साल या 40 सालों तक उनका विवेक उन्हें कोसता रहा और दोषी ठहराता रहा। फिर हम इस बात को भी महसूस करने की कोशिश करें कि जब इन्होंने उसे इस्माइली व्यापारियों के हाथों बेच दिया था तो ये उनके लिए एक ताज़ा घटना थी। उनके विवेक ने इस बात को उनके मनों में जिंदा रखा था। ये उनके मनों से नहीं निकला और वे इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। जब यूसुफ ने उनकी ओर मेल मिलाप का हाथ बढ़ाया था उस समय भी वे अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे और अब तक इन बातों को भूल नहीं पाए, जबकि मिस्र में करीब 17 वर्ष वे गुजार चुके थे। क्या कोई विवेक जैसे वास्तविकता पर संदेह कर सकता है? ये आज भी हमारे अंदर कार्य करता रहता है। वे लोग भी अभी तक इसके कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे, इसका इनकार नहीं कर पा रहे थे और न ही इसे छिपा पा रहे थे। दोष लगाने वाले विवेक से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। रोकते रोकते आखिरकार इनका विवेक इन्हें उस सच्चाई तक पहुंचा ही दिया कि इन्होंने वास्तव में गलत कार्य किया था। प्रिय मित्र, यहाँ पर एक मूल्यवान शिक्षा हमें मिलती है और वह ये है कि जब हमारा विवेक ही हमें दोषी ठहराने लगे तो हम क्या करेंगे। बेहतर तो यही होगा कि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसके अनुसार अपनी गलतियों को मान लें, पश्चाताप करें तथा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। हम यूसुफ के भाइयों के समान अपने कानों को बंद नहीं कर लें, बल्कि अपने अपराधों को मान लें तथा पूरी रीति से छोड़ भी दें, दोबारा उन्हीं बातों को न करें, और तभी हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर परमेश्वर दया करते हैं। मित्रों, क्या आप अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानने के लिए आज तैयार हैं? प्रभु आप पर कृपा करें।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09835983759। पुनः एक बार 09835983759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।